नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम से भजन संहिता नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर के निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और फिर से एक बार आज परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम भजन संहिता से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने भजन संहिता 51 को आरंभ किया था, तो आइए आज हम आगे बढ़ेंगे और भजन संहिता 51 के 9 पद से अध्ययन करेंगे। अब हम शोधन और सहभागिता की पुकार को देखेंगे। ध्यान दें कि अब दाऊद शोधन और सहभागिता की पुकार करता है। तो भजन संहिता 51 के 9 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। फेर ले अर्थात मेरे दाग धब्बे मिटा दे। मैं जब भी यात्रा में जाता हूँ या यात्रा करता हूँ तब मुझे हर एक पत्रिका में यही सुझाव दिया जाता है कि मैं धब्बे मिटाने वाला साधन साथ में रखूँ। मैं उनका सुझाव मानता हूँ क्योंकि धब्बे मिटाने वाले साधन की मुझे आवश्यकता है। हम सबको इसकी आवश्यकता होती है। भजन संहिता 51 के 10 पद में लिखा है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। उत्पन्न शब्द मूल में वही शब्द है जो उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 1 पद में आया है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। 12:12 शून्य से है। दाऊद ने कहा कि उसे एक नए मन की आवश्यकता थी, इसलिए उसने कहा, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। उत्पन्न का अर्थ है शून्य से कुछ बनाना। दूसरे शब्दों में दाऊद के मन में कुछ भी परमेश्वर के काम का नहीं था। वह सुधार या पुनरुद्धार की याचना नहीं करता है, वह तो एक पूर्ण रूपेण नया मन मांग रहा था। कभी कभी हम प्रचार का निमंत्रण सुनते हैं, परमेश्वर को अपना मन दो। क्या मैं पूछ सकता हूं कि परमेश्वर उस अशुद्ध मन का क्या करेगा? उसे वह मन नहीं चाहिए, वह किसी का मन नहीं चाहता है, वह तो आपको नया मन देना चाहता है, वह यही करना चाहता है। दाऊद एक शुद्ध मन की याचना करता है। इफिसियों की पत्र 2 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्र 5 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। जी हाँ, परमेश्वर आपको शुद्ध मन दे, नया मन दे। दाऊद एक और याचना करता है जिसे हम भजन संहिता 51 के 11 पद में पढ़ते हैं, मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। दाऊद जब राजा था तब उस पर परमेश्वर का आत्मा उतरा कि वह परमेश्वर का जन हो। प्रसंगवश आज कोई भी विश्वासी यह प्रार्थना नहीं कर सकता है, क्योंकि यदि आप में पवित्र आत्मा वास करता है तो वह आपको कभी नहीं त्यागेगा। आप उसे दुख पहुंचा सकते हैं, उसे निष्क्रिय कर सकते हैं, परंतु आप उसे दुखी करके निकाल नहीं सकते, उसे निष्क्रिय करके हटा नहीं सकते। इफिसियों के पत्र 4 अध्याय के 30 पद में पौलुस कहता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। इससे स्पष्ट होता है कि परमेश्वर की संतान पवित्र आत्मा के अंतर्वास से कभी वंचित नहीं होती है, परंतु पवित्र आत्मा विश्वासी के जीवन में निष्क्रिय हो सकता है और दाऊद के साथ ऐसा ही हुआ था। वह याचना करता है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके जीवन में कार्य करता रहे। तब वह आगे कहता है भजन संहिता 51 के 12 पद में, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। दाऊद ने अपना उद्धार खोया नहीं था, उसने अपने उद्धार का आनंद खो दिया था और वह परमेश्वर के साथ अपनी सहभागिता को पुनः स्थापित करना चाहता था। उसने भी उड़ाव पुत्र की नाई समझ लिया था कि दूर देश में पिता के घर के तुल्य आनंद कहीं नहीं है। उसे यह सब एक उद्देश्य के निमित्त चाहिए था। भजन संहिता 51 उसके 13 और 15 पद में लिखा है, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। वह परमेश्वर की स्तुति करना चाहता है। भजन संहिता 51 के 19 में कहता है, तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलियों से प्रसन्न होगा, तब लोग तेरी वेदी पर बलि चढ़ाएंगे। वह परमेश्वर की स्तुति ही नहीं करना चाहता था, वह उसे प्रसन्न करना चाहता था। यीशु मसीह एक फरीसी के घर भोजन करने गया। वहां एक स्त्री आई जिसके पाप यीशु ने क्षमा किए थे। शमौन फरीसी उसके अतीत को जानता था और मनो में वह उसे देख सड़क की दूसरी ओर हो जाता था, परंतु उस समाज की प्रथा के अनुसार उसके घर अतिथि भोज पर आया था और उस स्त्री को वहां आने का और खड़े होकर देखने का अधिकार था। उस युग में कुर्सियां नहीं थी, वे दीवार पर बैठते थे, वरन आधे लेटते थे। वह स्त्री यीशु के चरणों के निकट आई और रो रो कर उसके पांव धोए तथा इत्र से उनका अभिषेक किया। इस पर उसके सत्कारी शमौन ने आलोचना की और यीशु में दोष निकाला। यीशु ने उसे झिड़कते हुए कहा, लुकार्चि सुसमाचार 7 अध्याय उसके 44 पद में, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव अपने आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा है। इसके पश्चात उसने शमौन से कहा, 7 अध्याय के 47 पद में, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। मित्रों, हम सोचते हैं कि हम पूर्ण रूप से उचित हैं, परंतु परमेश्वर दोषी को निर्दोष नहीं ठहराएगा। वह कहता है कि आप और मैं उसके समक्ष दोषी हैं। आपको और मुझे निर्दोष ठहराने का उसके पास एक ही मार्ग है, अपने पुत्र को मरने के लिए दे देना। संसार में सबसे बड़े पापी के पास भी यही एक मार्ग है। आप और मैं इसी प्रकार उद्धार को प्राप्त करते हैं। जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा थोड़ा प्रेम करता है, जिसके बहुत पाप क्षमा हुए वह बहुत प्रेम करता है। आपके प्रेम का माप क्या है? आपके पाप का आंकलन क्या है? क्या यह हो सकता है कि आप अपने पाप स्वीकार न करें? अंतिम बार आप अपने पापों के लिए कब रोए थे? आप अपनी विफलताओं पर रात में कब रोए थे? परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसके पास हमारे लिए क्षमा है, परंतु पाप को पाप स्वीकार करना अवश्य है। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 51 समाप्त होता है और अब हम आगे बढ़ते हैं और 52 में देखते हैं, जिसका विषय है मसीही विरोधी कुकर्म का महापुरुष। भजन संहिता 52 से 55 में हम मसीही विरोधी या ख्रिस्त विरोधी के आगमन का ऐसा चित्रण देखते हैं जो कहीं और नहीं देखा जा सकता। यह ख्रिस्त विरोधी पाप का मनुष्य होगा जो संसार पर राज करने वाला निरंकुश शासक होगा और महाक्लेश के समय इसराइल पर प्रभुता करेगा। जैतून के पर्वत पर शिष्यों से वार्तालाप के मध्य यीशु ने इसका उल्लेख किया था। भविष्यद्वक्ता दानियल और प्रेरित पौलुस दोनों ही उसकी चर्चा करते हैं। ये चारों भजन मुश्किल हैं, अर्थात निर्देश के भजन हैं। ये हमें भविष्य के बारे में गहन आत्मिक तथ्यों का प्रकाशन प्रदान करते हैं। आज भविष्यवाणी के क्षेत्र में अनेक व्यर्थ की बातें की जा रही हैं। भावी घटनाओं के संबंध में तो पागलपन ही प्रकट हो रहा है और ऐसी ऐसी बातें की जा रही है जिन्हें कहना उचित नहीं है। इस युग की चिंता और अनिश्चितता के कारण बहुत जन परमेश्वर के वचन की ओर आ रहे हैं। मेरे मित्रों, जगह जगह भविष्यवाणी की सभाएं हो रही हैं और उनके प्रायोजक वे कलीसियाएं हैं जो भविष्यवाणी में कभी रुचि ही नहीं रखती थी। प्रचारक भविष्यवाणी की बातें करके सनसनी उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि ऐसी बातें परमेश्वर के वचन में है ही नहीं। इन चार भजनों की श्रृंखला इस पाप के मनुष्य के संबंध में हमें स्पष्ट निर्देश देती है आने वाले ख्रिस्त विरोधी के संबंध में। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि इस भजन का ऊपरी लेख आत्मा प्रेरित है और भजन का ही एक भाग है। प्रधान बजाने वाले के लिए मश्किल पर दाऊद का भजन। जब एदोम में 2:1 ने शाऊल को सूचना दी कि दाऊद याजक अहिमेलेक के घर गया था, अर्थात उसने दाऊद से विश्वासघात किया, तब उसने यह भजन लिखा था। दाऊद के अनेक कथित विश्वास योग्य मित्रों ने उसके साथ विश्वासघात किया था। और यहाँ एक और उल्लेख है, घमंड करना ख्रिस्त विरोधी की एक पहचान है। भजन संहिता 52 उसके 1 पद में लिखा है, हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? ईश्वर की करुणा तो अनंत है। यहाँ एक मनुष्य है जो अपने पाप का घमंड कर रहा है। दाऊद पाप करने के बाद चुप बैठा था क्योंकि उसका विवेक उससे धिक्कार रहा था। सांसारिक मनुष्य पाप करके घमंड से उसकी चर्चा करता है। ख्रिस्त विरोधी की एक पहचान यह है कि वह अपने पाप की घमंड से चर्चा करेगा। यह परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान में एक महान अंतर है। परमेश्वर की संतान एक सांसारिक मनुष्य की नाई पाप कर सकता है क्योंकि दोनों में यह पुराना पाप का स्वभाव उपस्थित है, परंतु अंतर यह है कि परमेश्वर का जन उस पर घमंड नहीं करेगा। वह लज्जा से सिर झुका लेगा और स्वयं से घृणा करने लगेगा, परंतु पापी जन अपने कुकर्म पर घमंड करेगा। पाप का मनुष्य या मसीही विरोधी ऐसे मनुष्य की पराकाष्ठा होगा। सब पापी इसके इस व्यवहार के कारण उससे लगाव रखेंगे। भजन संहिता 52 के 2 पद में लिखा है, तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है, सान धरे हुए उस्तरे के समान वह छल का काम करती है। परमेश्वर इस पाप के मनुष्य को कुछ समय के लिए ही सहन करेगा। 7 वर्ष इस मसीही विरोधी की जीव दुष्टता गढ़ेगी। भजन संहिता 52 के 3 पद में पढ़ते हैं, तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। आपने कुछ मनुष्यों के लिए सुना होगा कि वे झूठ बोलना ही उचित समझते हैं, जबकि सच कहना बहुत ही आसान हो जाता है। ख्रिस्त विरोधी के विषय में भी यही सच बात है। भजन संहिता 52 उसके 4 पद में लिखा है, हे छली जीभ, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। इस भजन में पाप के मनुष्य के 2 नाम दिए गए हैं। भजन 52 उसके 1 में उसे वीर कहा गया है और इस पद में उसे छली जीभ कहा गया है। आप उसका कहा एक भी शब्द विश्वास करने योग्य नहीं मान सकते, यह उसका एक और गुण है। भजन संहिता 52 के 5 में लिखता है, निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा, वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवतों के लोक से तुझे उखाड़ डालेगा। नष्ट करने का अर्थ है हराना। ख्रिस्त विरोधी विश्व शासक होगा जिसे परमेश्वर को छोड़ कोई और रोकने में सक्षम नहीं होगा। जब प्रभु यीशु फिर पृथ्वी पर आएगा तब वह पाप के मनुष्य को हराएगा। भजन संहिता 52 उसके 6 पद में लिखा है, तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे और यह कहकर उस पर हंसेंगे। परमेश्वर जब ख्रिस्त विरोधी को दंड देगा, उसे हराएगा, तब वह जिसे संसार भय खाता था उसका ठट्ठा करेगा। ख्रिस्त विरोधी जगत के लिए उपहास का पात्र बन जाएगा। भजन संहिता 52 उसके 7 पद में लिखा हुआ है, देखो यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा। वह बहुत धनवान मनुष्य होगा। हमारे जितने भी अच्छे नेता हो चुके हैं वे उस युग में अयोग्य माने जाएंगे। ख्रिस्त विरोधी बहुत ऊंचा उठेगा क्योंकि वह एक अति धनवान मनुष्य होगा। इस बीच परमेश्वर की संतान कह पाएगी, भजन संहिता 52 उसके 8 और 9 पद के अनुसार, परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा क्योंकि तू ही ने यह काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बाट जोहता रहूंगा क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। यह संक्षिप्त भजन ख्रिस्त विरोधी का भविष्यवाणी का परिदृश्य प्रदान करता है, साथ ही उसके सताए गए शेष इसराइली भक्तों की दशा प्रस्तुत करता है। उसके हार जाने पर वे परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 52 भी समाप्त होता है और अब हम भजन 53 में आते हैं, जिसका विषय है मूर्ख जो ख्रिस्त विरोधी का प्रतिरूप है, परमेश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। भजन संहिता 53:1 में लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। यह भजन प्रधान बजाने वाले के लिए महलत की राग पर दाऊद का मश्किल है। महलत दुख का संगीत होता था जो रोग और दुखों के समय बजाया जाता था, और यह अंतिम दिनों के दुखों के लिए है, जब ख्रिस्त विरोधी का शासन होगा, वह नास्तिक होगा। भजन संहिता 14 और भजन संहिता 53 में जो एकमात्र अंतर है वह यह है कि उनमें परमेश्वर का नाम जितनी बार लिया गया है वह अलग अलग है। जैसे भजन संहिता 14 में यहोवा नाम 4 बार आया है और इलोहिम 3 बार आया है, जबकि भजन 53 में इलोहिम 7 बार आया है। यह महत्वपूर्ण है, इलोहिम परमेश्वर का सृजनहार के रूप में नाम है। अब देखिए कि नास्तिकतावाद का आरंभ कहां से हुआ। यह सृष्टि की उत्पत्ति से संबंधित है। बाइबल जो परमेश्वर का प्रकाशन है उसे अस्वीकार किया गया है और उसे विश्वास योग्य, त्रुटि रहित और अचूक नहीं माना जाता है। उत्पत्ति के आरंभिक अध्यायों को कपोल कल्पित या काल्पनिक कथा कहा जाता है। इस समूह में विश्वासी भी आते हैं। विकासवाद को उत्पत्ति की व्याख्या भी माना जाता है। एक बार किसी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष ने कहा, हम किसी भी बात को स्वीकार नहीं करते, यहाँ तक कि परमेश्वर के अस्तित्व को भी नहीं। यह ख्रिस्त विरोधी की आत्मा है, वह पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर के अस्तित्व का इनकार करेगा। पहला योहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसके 22 पद में ख्रिस्त विरोधी की पहचान दी गई है। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को मानने के लिए आपको विश्वास करना आवश्यक है। इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय उसके 6 पद से स्पष्ट है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। वर्षों पूर्व की बात है कि वीटल नामक एक संगीत मंडली थी जो कहती थी कि वह प्रभु यीशु से अधिक लोकप्रिय है। यह सच नहीं है। ऐसी लोकप्रियता कुछ समय की ही होती है। यह बड़ी रोचक बात है कि प्रभु यीशु मसीह इतने समय बाद भी फिर प्रकाश में आ गया है। ख्रिस्त विरोधी का गुण है नास्तिकवाद। अंतिम दिनों में नास्तिकवाद का बल उसी के द्वारा चरम सीमा पर होगा। 2 थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय के 4 पद में पौलुस उसके विषय में कहता है, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। मित्रों, आगे हम देखते हैं कि इस भजन के अंत में विश्वासी भक्तों में शेष बचे लोगों की मनोकामना व्यक्त है। भजन संहिता 53:6 में हम पढ़ते हैं, भला होता कि इसराइल का पूरा उद्धार सियोन से निकलता, जब परमेश्वर अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इसराइल आनंदित होगा। इस पद को पढ़ने के बाद कोई कैसे कह सकता है कि इसराइल के साथ परमेश्वर का व्यवहार समाप्त हो गया है? जब परमेश्वर अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इसराइल आनंदित होगा। इसराइल के लिए परमेश्वर की भावी योजना को अस्वीकार करने का अर्थ है धर्मशास्त्र की प्रेरणा और त्रुटिहीनता को अस्वीकार करना। परंतु विश्वासी होने का दावा करने वाले भी इसके साथ शब्दों से खेलते हैं। वे जो सहस्त्र वर्ष के प्रभु राज्य में विश्वास नहीं करते, उन्होंने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अर्थ निर्धारण करने की अपेक्षा शब्दों का खेल रचाया है। मेरी समझ में धर्मशास्त्र को शब्द जाल में बुनने का अर्थ है उसकी आत्मिक प्रेरणा का इनकार करना। अब मेरे मित्रों, परमेश्वर ने इसराइल के साथ व्यवहार करना समाप्त कर दिया है, यह कहना सर्वथा अनुचित है। इस पद को एक बार फिर से ध्यान से सुने, भला होता कि इसराइल का पूरा उद्धार सियोन से निकलता। जब परमेश्वर अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आएगा तब याकूब मगन और इसराइल आनंदित होगा। मेरे विचार में एक बच्चा भी इस पद को समझ सकता है। सियोन का अर्थ सियोन और याकूब का अर्थ याकूब और इसराइल का अर्थ इसराइल तथा परमेश्वर का अर्थ परमेश्वर है। यह पद वही अर्थ रखता है जो कहता है। परमेश्वर इस प्रार्थना का उत्तर देगा। वह एक बार फिर इसराइल के साथ एक चुनी हुई जाति के रूप में व्यवहार करेगा। यहाँ पर भजन संहिता 53 समाप्त होता है। अब हम भजन 54 में देखेंगे, ख्रिस्त विरोधी के युग में विश्वास की पुकार। यह छोटा सा अनुपम भजन यहाँ इसलिए डाला गया है कि महाक्लेश के संकटों के मध्य हम परमेश्वर की प्रजा के शेष रहे भक्तों और उनके साथ अन्य जातियों के विश्वास की पुकार को सुने। अब इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का मश्किल, तार वाले बाजों के साथ जब जीपियों ने आकर शाउल से कहा, क्या दाऊद हमारे साथ छिपा नहीं रहता? इस प्रस्तावना से हमें बहुत से भेद समझ में आते हैं। बाजा तार वाला है, मश्किल का अर्थ है निर्देशों का भजन, दाऊद का भजन। जीपियों ने दाऊद के साथ विश्वासघात किया था, जिसका उल्लेख पहला शामुएल के पुस्तक अध्याय 23 में है। जब दाऊद को समाचार मिला कि इन लोगों ने शाउल को उसका पता दे दिया है, तब वह पुकार उठा। भजन संहिता 54 उसके 1 और 2 पद में हम पाते हैं, हे परमेश्वर अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे मुंह के वचनों की ओर कान लगा। दाऊद के साथ विश्वासघात हुआ था। वचन कहता है कि महाक्लेश के समय भाई भाई का विश्वासघाती हो जाएगा। वह समय भयानक विश्वासघात का समय होगा। दाऊद से विश्वासघात करने वाले अभक्त जन थे। महाक्लेश के समय अभक्त ख्रिस्त विरोधी का राज्य होगा और शेष बचे हुए यहूदी इस पापी मनुष्य के अधीन बड़ा कष्ट उठाएंगे। भजन संहिता 54:3 पद में लिखा है, क्योंकि परदेशी मेरे विरुद्ध उठे हैं और कुकर्मी मेरे प्राण के ग्राहक हुए हैं, उन्होंने परमेश्वर को अपने सम्मुख नहीं जाना। दाऊद घोर निराशा में था और महाक्लेश के समय शेष इसराइली भक्त भी ऐसा ही कष्ट उठाएंगे। यह छोटा सा भजन परमेश्वर की सहायता में विश्वास की अभक्ति के साथ अंत होता है। भजन संहिता 54:4-7 पद में हम पढ़ते हैं, देखो परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है, वह मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा। हे परमेश्वर अपनी सच्चाई के कारण उनका विनाश कर, मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा। हे यहोवा मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा क्योंकि यह उत्तम है, क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूँ। इतिहास से विदित होता है कि परमेश्वर ने निश्चय ही पीड़ादायक जीपियों से दाऊद को बचाया और शेष इसराइली भक्त भी मुक्ति के लिए परमेश्वर में विश्वास कर सकते हैं। परमेश्वर निश्चय ही अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करेगा। यहाँ पर भजन 54 समाप्त होता है। अब हम भजन संहिता 55 में देखते हैं, जिसका विषय है ख्रिस्त विरोधी के अधीन अंधकार का समय। ख्रिस्त विरोधी के भावी चरित्र चित्रण के भजन समूह के 4 भजनों में यह अंतिम भजन है। यह भी एक मुश्किल भजन है, अर्थात निर्देशों का भजन। यह मेरे विश्वास में यहाँ अंधकार के महाक्लेश का चित्रण है। ख्रिस्त विरोधी जो पाप का मनुष्य है, वह यहाँ अति उत्तम रीति से चित्रित किया गया है, जिसे भविष्यवाणी के विद्यार्थियों के साथ अनेकों ने समझा नहीं है। इस भजन का शीर्षक है, प्रधान बजाने वाले के लिए तार वाले बाजों के साथ दाऊद का मश्किल। हमें इस भजन की पृष्ठभूमि ठीक से नहीं बताई गई है, परंतु मेरे विचार में हम उचित कल्पना कर सकते हैं। अपने पुत्र अबशालोम के विद्रोह के कारण दाऊद को यरूशलेम छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा था। वह देख चुका था कि उसके पुत्र के बहुत अनुयायी हैं और महान समस्या खड़ी हो सकती है। वह नहीं चाहता था कि उसका प्रिय नगर युद्ध में नाश हो। वह वहां से हट गया। वह छिपने के लिए गुफाओं में चला गया। जब दाऊद रोता हुआ अपने प्रिय नगर से बाहर जा रहा था, तब उसे समाचार मिला कि उसका घनिष्ठ मित्र एवं सलाहकार अबशालोम के साथ हो गया है अर्थात उसने दाऊद के साथ विश्वासघात किया। दूसरा शमूएल की पुस्तक 15 अध्याय उसके 30 और 31 पद में हम पढ़ते हैं, तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढांके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढांके हुए रोते हुए चढ़ गए। तब दाऊद को यह समाचार मिला, अबशालोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहितोपेल है और परमेश्वर ने ठीक ऐसा ही किया, उसने अहितोपेल के परामर्श को मूर्खता बना दिया। इस भजन की पराकाष्ठा पर आते हुए इन बातों को ध्यान में रखें। भजन संहिता 55:1-2 में लिखा है, हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह न मोड़, मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे, मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ। दाऊद एक चरमराता हुआ पहिया है जिसमें ग्रीस भरने की आवश्यकता है। दाऊद कहता है मैं छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं। भजन संहिता 55:3-4 में लिखा है, क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं, वे मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर सताते हैं, मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। दाऊद नहीं जानता था कि वह घात किया जा सकता था क्योंकि उसके घनिष्ठ संबंधियों ने उसके साथ विश्वासघात किया था। भजन संहिता 55:6 में लिखा है, तब मैंने कहा भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। दाऊद को सुझाव दिया गया था कि वह पर्वत में जा छिपे, परंतु उसने नहीं सुना, परंतु अब सब कुछ खो गया है। यहाँ तक कि उसका विश्वास योग्य परामर्शदाता अहितोपेल भी उससे अलग हो गया था। क्या इससे आपको कुछ स्मरण आता है? मुझे यहूदा इस्करियोती का स्मरण आता है जिसने मसीह यीशु के साथ विश्वासघात किया था। यह भविष्य की उस घटना का प्रतीक भी है जब ख्रिस्त विरोधी इसराइल के साथ धोखा करेगा। हम में से अनेकों को विश्वासघात का अनुभव हुआ है। मेरी सेवकाई के समय काल में मैंने भी इस बात का अनुभव किया है, लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया। आप किसी पर अत्यधिक भरोसा करें और वह आपके साथ धोखा करे तो आपको बहुत दुख होता है। जी हाँ, यह हम में से कई लोगों के लिए अनुभव का कारण बन चुका है। परंतु आज हम अपने जीवन को परमेश्वर के निकटता में लाएं और इन अनुभवों को स्मरण न करते हुए परमेश्वर से कहें कि प्रभु मैं आपके निकटता में अपने जीवन को लाता हूँ, मैं सच्चा जीवन जीना चाहता हूँ। यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है।
प्रिय श्रोताओ, यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, तो नोट कीजिए हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in। नमस्कार।
किसी को है नाम आदमी का इससे